Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Sri Shankar Bhagavat Pad Virachita Dashashloki Na Bhumir Na Toyam Na Tejo Na Vayur नखम नेन्द्रियं वा न तेषाम् अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्ते कसिद्धस्तदेको वसिष्ठ शिवः न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे दयोपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् तदेको वसिष्ठ न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न कत्वात् तदेको वसिष्ठः न सांख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्म विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिवके न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर्न बाह्यं न मध्यं न तिर्यं न पूर्वापरा यद्व्यापकत्वात् अखण्डैकरूपस्तदेको वसिष्ठ शिवः के न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीनं न कुब्जं न पीतं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वसिष्ठ शिवः न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णु तदेको वसिष्ठ शिवः न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजस प्राज्ञ को वा अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीयस्तदेको वसिष्ठ शिवः केवल अपि व्यापकत्वाधितत्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावात् अनन्यास् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्य तदेको वसिष्ठः शिवः के न चैकं तदन्यद्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वं न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धम् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि. प्रत्येक श्लोक में तदेको वसिष्ठ शिवः केवलोऽहम् ये दश श्लोकी का निचोड़ है. जब सबका निषेध हो जाएगा फिर यही बोलना रहता है बाकी कि एकमात्र वह शिव स्वरूप मैं ही हूं। उसी शिव रूपता की प्राप्ति के लिए जिन चीजों की वजह से जिसका यहां निषेध किया गया, समझ लीजिए इन्हीं वजहों से हम अपने शिव रूपता को नहीं जान पा रहे थे। जब सबका निषेध करते चले गए तो बस तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम, ये अनुभूति की भाषा है। जैसे पंचदशी में तृतीयदी प्रकरण में अंतिम में विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा ऐसा, धन्योहम धन्योहम, कृतकृत्यज्ञोहम कृतकृत्योहम, तृप्त तृप्त्योहम, अर्थात जो तृप्ति मुझे प्राप्त करनी थी वो प्राप्त कर लिया, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। दोनों का बड़ा संबंध है, तृप्ति का और करने का। जब तक करना शेष रहता है तब तक तृप्ति नहीं होती, और जब तृप्ति हो गई इसका मतलब करने का काम पूरा हो गया। कृतकृत्यता का मतलब ही होता है कर्तृत्व भाव से ऊपर उठ जाना, और तृप्त तृप्यता, तृप्य मतलब तृप्त करने के योग्य, और तृप्त मतलब तृप्त हो गए, भूतकाल पास्ट टेंस। कृत मतलब कर लिया और कृत्य मतलब करने योग्य, जो हमारे लिए करने योग्य था वो हमने कर लिया, और जो मुझे चाहिए था अर्थात भोक्तृत्व और भोग्य, करने के बाद हमारे मन में कर्तृत्व भाव दृढ़ होता है, और जब इसी को हम छोड़ते हैं तो कर्तृत्व भाव शिथिल होता है। अन्वय और व्यतिरेक जो हमारे दृष्टांत देते हैं वेदांत में, जब जब कर्तृत्व बुद्धि है तब तब भोक्तृत्व बुद्धि बनेगी ही बनेगी। करके और कोई कहे हम ऐसे कोई लेना देना नहीं है तो करते ही क्यों हो, कहीं न कहीं हम लोग अपने साथ छलावा करते हैं। या तो फिर ऐसी स्थिति आ जाए है न निरग्निर न चाक्रिय करके कि भगवान ने सावधान किया कि मैं अग्नि नहीं छूता, मैं कुछ नहीं करता, ऐसे करने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता, जरूरत पड़ने पर करना भी पड़ सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, इस भाव से ऊपर उठना चाहिए। हाँ, हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, इसके बजाय हम नहीं भी करेंगे तो चल सकता है ना, ये भाव लाओ ना। प्राय लोगों को क्या समस्या रहती है मालूम है, हमें अपने आबू वाले महाराज जी की बात याद आती है। माउंट आबू में एक बार ऐसे भोजन के लिए बैठे थे पंगत में, तो उस समय हम भी काशी में पढ़ते थे, पढ़ाई के समय भी वहां गया, छुट्टी का समय था, पता चला आबू में थोड़ा भोजन अच्छा बनता है, और काशी में भोजन जैसा बनता था वो तो भगवान ही जाने, अन्न देवता है अन्न ब्रह्म है, कुछ बोलना नहीं उसके बारे में, लेकिन मन तो बोलता है ना, जानता है कि क्या हो रहा है, बोले बिना रहा कहां जाए। तो पंगत में जब भोजन कर रहे थे उसी समय ऐसे बात चली, तो कहा महाराज जी आबू का भोजन बहुत अच्छा है। महाराज जी बोले क्यों, काशी में भोजन अच्छा नहीं है? बोले यहां जैसा तो नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो उसी में किसी ने बोला एक कोठारी बोलते हैं, बढ़िया भोजन कराने से विद्यार्थी बिगड़ जाते, वो फिर स्वाद के चक्कर में रहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। महाराज जी ने कहा बात ऐसी है, ये तो नहीं देने वाली बात होगी, भोजन नहीं देना हो, यदि भोजन बढ़िया देने से नहीं पढ़ते हैं तो ये भी तो कहा जा सकता है, यदि अच्छे भोजन देंगे तो अच्छे पढ़ेंगे। बस बात को थोड़ा सा इधर से उधर घुमाना है, नहीं देना है तो क्या बोलेंगे, बढ़िया भोजन मत दो, बिगड़ जाएंगे। और देना ही है तो क्या कर सकते भाई, दो अच्छे दोगे, अच्छे खिलाओगे तो अच्छे पढ़ेंगे। हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा भी, जैसे हम बोल सकते हैं तो हम नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ये भी तो बोल सकते हैं। थोड़े हिम्मत तो करो, एक कदम आगे बढ़ो। लेकिन हम करते नहीं है, पहले ही हमारे दिमाग में दुनिया भर की बातें आ जाती है। इसी को हमारे वेदांत भाषा में उद्वेग आदि से कहा है। उद्विग्न शब्द जो प्रयोग किया है ना, आएगा प्रसंग, विचार करेंगे इस पर। अभी हमें इतने ही विचार करना है कि जो कुछ भी किया जाता है उसमें कहीं न कहीं कर्तृत्व भाव के होने की संभावना रहती है, और करने के बाद जो किया जाए उसका जो फल होगा वह भी हमें भोगना पड़ता है। और ये जो उद्गार प्रकट किया विद्यारण्य स्वामी जी ने कि कृतकृत्यो हम, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, जो मुझे तृप्ति चाहिए थी वो मुझे मिल गई, अब वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठ चुका है। कृतकृत्यता हुए बिना तृप्त तृप्यता हो नहीं सकती, और तृप्त तृप्यता यदि है तो इसका मतलब है कृतकृत्यता उसकी पूरी हो चुकी है। अभी हम लोग अपने साथ ऐसा नहीं कर पाते। कृतकृत्यता क्या है, जो करने योग्य था वो हमने कर लिया। उम्र हो गई, बचपन में क्या सोचते थे, बस विवाह करें, गृहस्थी बसाए, बच्चे पढ़ा दें। कई लोग ऐसा बोलते हैं, महाराज बुढ़ापे में तो आप ही के पास आना है, आश्रम में रहेंगे हम आपके पास, आश्रम में आ भी जाओगे, घर में पोता रोएगा कि आप शांति से रह पाओगे, जो जीवन भर किया है घर में संस्कार तो वही रहेगा ना। उस समय यदि वेदांत पढ़ोगे भी और बेटे का फोन आ गया, बाबूजी आप कहाँ हो, आ जाओ यहां मेरा बच्चा बीमार है, और उस समय यदि वेदांत का स्वाध्याय चलेगा, आप स्वाध्याय सुनोगे भी पोता याद आएगा, बहुत मुश्किल है। ये जो जीवन भर अभ्यास किया जाता है ना, वो सहसा छूटता नहीं। पकड़ने में सबको मजा आता है, जब छोड़ने की बात आती है, किसी से बोलो ना थोड़ा हरिद्वार रहो महीना भर, महाराज राजा जनक तो घर में रह करके ज्ञान प्राप्त किया, अपने को राजा जनक से भी कम नहीं मानता कोई। यदि राजा जनक आ जाएंगे तो उनसे कहेंगे आप भी कहीं न कहीं गड़बड़ करते होंगे, हम तो आपसे ऊपर उठ चुके, बहुत बड़ी बातें करते हैं, भी अच्छी बात है। लेकिन राजा जनक की स्थिति क्या थी, दृष्टांत है, उदाहरण है, पढ़ते हैं, सुनते हैं। हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अपने को देखो। ये जो श्लोक है ना, पहला श्लोक बहुत ही अच्छा है, पूरी बात इसमें आ जाती है, इसलिए इसके ऊपर ही आचार्य ने बहुत लंबी टीका लिखी है, आगे फिर थोड़ा थोड़ा करके लिख दिया। एक में एक साधे सब सदे वाली बात है, पहला श्लोक हो गया तो बाकी सभी श्लोक में वही बात है। पृथ्वी जल तेज वायु पांच भूतों से शरीर बना, इन्हीं पांच भूतों से विषय बने, वह विषय कहां है, इसी संसार में है। अब आप विचार कीजिए, जिस विषय से संसार बना ये एक सामाजिक व्यवस्था हुई, और जो शरीर लेकर के हम लोग बैठे हैं ये वैयक्तिक व्यवस्था हुई। एक जो है सोशल सिस्टम हो गया और एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत मामला हो गया। अब इन दोनों को कैसे सुधारना है, कभी तो हम अपने शरीर के दुख से दुखी है और कभी समाज की व्यवस्था से दुखी है, इन्हीं को सुधारने में पूरा जीवन निकलता है। आप बोलते हैं हमें क्या करना है, हमको तो भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, अब थोड़ा चाहता हूं समाज के लिए कुछ करूं। कुछ लोग बोलते हैं हमने तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं अपने लिए, हमेशा समाज के लिए ही किया है। इतने सब करने के बाद भी क्या कृतकृत्यता पूरी हुई, तृप्त तृप्यता हुई? अंतिम ऐसा लगता है कि कोई ऐसे महापुरुष मिल जाए। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर जी से लिखते हैं, संसारा ध्वनि ताप भानु किरण क्रोध भूत दाह व्यथा। बहुत अच्छा भाव है। संसारा ध्वनि, संसार रूपी जो अध्व मार्ग है, इस संसार में चलते समय छोटा बच्चा जब थोड़ा होश संभालता है ना, उसको मोबाइल दे दो, खिलौना दे दो, बड़ा मस्त होता है। अभी उसको कुछ भी याद नहीं है कि मां के गर्भ से निकलते समय हमने क्या वादा किया था। क्या वादा किया था कि हे प्रभु, आप हमको जल्दी से यहां से निकालो, और यदि अच्छे घर में आप भेज रहे हो, जो हमारे माता पिता यदि प्रेमपुरी जाते होंगे तो हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। अब जिनके माता पिता ही यहां नहीं आते तो बच्चे को कहां से मौका मिलेगा। यहां आने में क्या हर्जा है, थोड़े कि उम्र होने पर ही सुना जाए। ये अध्यात्म विद्या का उपदेश भगवान करे, कभी न कभी भारत के संविधान में पता नहीं कानून है कि नहीं, थोड़े से भी अध्यात्म विद्या की शिक्षा दी जाए ना स्कूलों में बच्चों को, मुझे लगता है उनका जीवन संवर जाएगा। बड़े होने पर अब आर्ट ऑफ लिविंग जो चला रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी, ये सब कर रहे हैं अपना काम, लेकिन स्कूल में ही यदि बच्चे को ये शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में दिया जाए कि तुम्हें जीवन में क्या करना है, घर में मिल के रहना है, माता पिता का आदर करना है, पत्नी से प्रेम करो, बच्चे से प्रेम करो, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, फिर हमें लगता है 50% तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। और अभी तो हम लोगों का वो हाल है, साइकिल खड़ी कर दिए, पीछे के स्टैंड लगाने के बाद साइकिल का पिछला चक्का उठ जाता है, और उठने के बाद यदि साइकिल पर बैठे पैडल मारते रहो, वो साइकिल ना आगे जाने वाली है ना पीछे, जहां के वहीं, इसी को बोलते संसार चक्कर। घूम फिर करके हम वहीं के वहीं आ जाते हैं, क्योंकि बीमारी कहां से शुरू हुई है उसके जड़ पकड़े बिना यदि ऊपर ऊपर से इलाज किया जाएगा तो उस बीमारी कभी ठीक होने वाली नहीं है। संसार का नाम ही रखा महाव्याधि। आचार्यों ने लिखा ऐसा कि संसाराख्य महाव्याधे किम मूलम इति चिंतित। ये जो संसार रूपी महाव्याधि जो हम लोगों को मिली है, इसका मूल क्या कारण है? जो हमें शरीर मिला इसके पीछे मूल कारण क्या है? जो ये संसार बना इसके पीछे मूल कारण क्या, ये जरा विचारणीय है। तद्ध्वस्तये चिकित्सेयम्। व्याधि तो ठीक होती है, ऊपर ऊपर के दवाई किया ठीक हो गए, फिर थोड़े दिन के बाद फिर बीमार हुए, फिर इलाज किया, फिर ठीक हो गए। पंचदशी में ये सब विस्तार से आया है, वहां पर स्थूल शरीर का अपना रोग है, सूक्ष्म शरीर का अपना रोग है, कारण शरीर का भी अपना रोग है, कहीं पर प्राप्ति पर रोग है, कहीं पर अप्राप्ति पर रोग है, लंबा चौड़ा वो भी प्रसंग आएगा, विचार करेंगे। अभी इतना समझ कर चलिए कि दवाई ले रहे हैं, रोग ठीक हो गया ऐसा लग तो रहा है, लेकिन फिर दोबारा पनप जाता है वो रोग। तो जिस व्याधि को दवा तो सकते हो मिटा नहीं सकते हो, उसी का नाम है महाव्याधि। व्याधि तो दवाई से दवा करके काम चला लिया, लेकिन महाव्याधि जो संसार है, पुराने वैद्य लोग नाड़ी के द्वारा पता लगा लेते थे, अभी है अच्छे अच्छे कुशल वैद्य। हमारे शरीर में ये जो तीन प्रकार के जो प्रकोप है, वात, पित्त और कफ, वायु करीब 40 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 40 प्रकार। एक वायु का ऐसा रोग होता है कि शरीर में घूमती रहती हो वायु, कभी सिर में अटक गई सिर दर्द, कभी पीठ में अटक गई पीठ दर्द, कभी पेट में अटक गई पेट दर्द, पूरे शरीर में वो यात्रा करती रहती है। जिसको ये रोग होता है उससे पूछो, हमने एक आदमी को देख रखा है, बहुत दवाई कराया ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा ये वायु न मरेगी न निकलेगी, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर में रहेगी ही रहेगी, और इससे तुमको थोड़ा थोड़ा दुख होता ही रहेगा, बताए उसका कोई इलाज ही नहीं। 40 प्रकार के वायु में पेट में जब वायु है गैस बन गई और यदि घुटनों के जोड़ों में घुस जाए तो हमें लंगड़ा होने के लिए मजबूर कर देती है। कमर आदि में कहीं कुछ हो जाए स्लिप डिस्क क्या क्या बोलते हैं उसे बीमारी होती है। कफ जो 20 प्रकार के हैं और पित्त भी 20 प्रकार के, और इन्हीं तीनों बात पित्त और कफ के अनुसार हम लोगों का जीवन सुख और दुख का अनुभव करता हुआ रहता है। कफ हो गया कम करो दवाई खाओ, कफ का शरीर में होना भी जरूरी है। पित्त न हो भोजन ही न पचे और ज्यादा हो जाए एसिडिटी हो जाती है। वायु की समस्या अपनी जगह है ही, यही हमारे लिए सुख और दुख के कारण बनते रहते हैं। जिसका निदान वैद्य लोग कफ बढ़ करके यदि बुखार हुआ है तो उसको बोलते कफ ज्वर, पित्त बढ़ करके जो बुखार होता है उसको बोलते पित्त ज्वर, और वायु से वात ज्वर। यदि वायु से ज्वर हुआ है तो बुखार अपने आप ठीक कब होगा, जब वायु को ठीक किया जाए। वो मूल को पकड़ करके इलाज करते हैं कि वायु को ठीक कर दो तो उस संबंधी ज्वर अपने आप ठीक हो जाएगा। और एलोपैथी आदि की जो दवाई है तुरंत लो, फायदा भी तुरंत होगा उसका, लेकिन कहीं न कहीं उसकी जड़ बनी रह जाती है और बार बार फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो संसाराख्य महाव्याधे, व्याधि तो हो गई आए और जाए, लेकिन एक जो महाव्याधि है जिसका समूल नष्ट हुए बिना मिटने वाला नहीं, ऐसा जो संसार रूपी रोग। संसाराख्य महाव्याधे किम मूलम इति चिंतयेत तद्ध्वस्तये चिकित्सेयम्। उसको ध्वस्त करने के लिए क्या चिकित्सा है, किस प्रकार के दवाई है, तदा फलवती भवेत। दवाई कर लेना भर ही, ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया। उस दवाई से हमें सफलता मिली या नहीं, जिस रोग को ठीक करना था मूल को समाप्त करना था वो काम बना कि नहीं, कृतकृत हो गए कितनी देर के लिए, बस जी बेटा को पढ़ा देता हूं और थोड़ा बड़ा हो जाए उसकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तो हमने सोच रखा है कि 6 महीना हरिद्वार रहेंगे और 6 महीना बंबई रहेंगे। हर आदमी के अपने डायरी में प्लान है अलग अलग, कोई कुछ प्लान बना के रखा है। विदेश में रहने वाले जो NRI है वो भारत में ले लेते मकान संपत्ति, सोचते हैं 6 महीना इंडिया रहेंगे और 6 महीना वहां रहेंगे। जिस देश में सर्दी ज्यादा होती है वो गर्मी में उधर रहते हैं, और इधर जब ठंडी में ठंड कम होती तो बंबई आ जाते हैं। सीजन के हिसाब से अपनी व्यवस्था करना, खाने पीने के हिसाब से अपनी व्यवस्था करना, तो क्या इससे हम कृतकृत हो गए? बेटा हो गया उसकी शादी हो गई अब उसके बच्चे हो गए, बोले मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बेटा तो पूछता नहीं तो पोता को सुना सुना करके बेटे को ताने मारते हैं। जब पोता कभी बदमाशी करता है, इसका बाप भी ऐसा ही था, बड़ा अच्छा लगता है। अब सहसा यदि कुछ ऐसे घर में घटना घट जाए, बेटा भी अपमान कर दे, पोता भी बड़ा होकर बोल दे दादाजी आप मेरे पीछे मत पड़ा करो, फिर भी वही अच्छा लगता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जब बाबा जी भागवत में बोलते आत्मदेव जी को, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, आ जाओ मेरे पास भजन करो, बोलते हैं ऐसे सूखा बाबा बन के हमको नहीं रहना, जो गृहस्थ आश्रम में सुख है वो आपको क्या मालूम। तो उनके ललाट को पढ़ के बाबा जी समझ जाते इसके भाग में यही लिखा है, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, तब एक फल दे देते ले जाओ। और उसके पीछे फिर क्या क्या हुआ सब आप सब जानते हो अच्छी तरह से। यदि किसी को पता लग जाए कि मैं जिससे विवाह करने जा रहा हूं वो पत्नी दुखदायी होगी, उससे होने वाले संतान से हमें दुख मिलेगा, कोई शादी विवाह करेगा? हम लोग अंधेरे में तीर मारते हैं, बात बन गई तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, चलती का नाम गाड़ी है, चलाते रहो। चल गई तो तुक्का लग गया, नहीं चले तो क्या करेगी, भगवान की यही मर्जी होगी। लेकिन कोई भी दुख प्राप्त करने के लिए न तो किसी से हम संबंध बनाते हैं, जहां जहां दुख होने की संभावना हो। गीता के 13वें अध्याय में आचार्य ने कहीं भाष्य में ये सावधान किया है कि आगे सांप है, गड्ढा है, कांटा है, चूहे का पता लग जाता है, व्यक्ति पहले ही मुड़ जाता है। जानबूझ के पंगा कोई नहीं लेना चाहता। तो हम लोग जो ये संसार में पंगा ले रहे हैं, जानबूझ करके ले रहे हैं कि अनजाने में? जानबूझ के तो नहीं ले रहे, सब लोग अनजाने में लेते हैं। वो तो बाद में मालूम पड़ता है, तब लगता है कि पहले ही महात्मा बन जाता तो अच्छा था। पहले हम बन नहीं पाए और जब बनने की इच्छा हुई तब हम बन नहीं सकते। अब आप बोलते हैं कोई बात नहीं महाराज जी, जब बुढ़ापा आएगा ना, जब घर का सब काम निपट जाएगा तब हम आपके पास आ जाएंगे। उस समय जाके हम क्या करेंगे? घर का जो संस्कार होगा, आश्रम में जाएंगे उसी संस्कार से आपका व्यवहार होगा। घर में यदि हमने राजनीति की है, खुरापात किया है, आश्रम में रहेगा तो वहां भी सबको उंगली करता रहेगा। वो मजबूर है आदत से। जो अपने बच्चों में भेद कर सकता है, अपने घर में फूट डाल सकता है, वह भला आश्रम में कैसे शांति से रहेगा? जिस घर को हम घर मान करके अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, आश्रम ही एक ऐसी जगह है जहां पर कहीं के ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुरवा जोड़ा, तो वहां कोई किसी का नहीं होता है। कोई मर गया तो सब लोग खुश होते, बहुत अच्छा हो गया, शांति हो गई। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता है, लेकिन न तो उसमें कोई सूतक लगता है। महात्मा जब मरते हैं ना, उसी दिन बढ़िया भोजन पकता है। घर में तो थोड़ा दूसरा माहौल होगा, लेकिन आश्रम में ठीक इससे उल्टा होता है। घरों में बर्थडे पार्टी मनाते हैं, महात्मा लोग निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। हमारे प्राचीन परंपरा वाले जो महात्मा है ना, आप कहीं भी देखना, कोई करते हो बुरा न माने, पुराने महात्मा लोग कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं।